ओम शांति। इस योग तपस्या भट्टी की शुरुआत हमने एक छोटे से प्रयोग से की थी। जिस प्रयोग में आत्मिक स्वरूप में स्थित होना और आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, ये दो बातें हमने की थी। और अब इस क्लास की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं। बहुत बहुत समय पहले किसी देश में एक समुद्र का व्यापारी था, जो कि समुद्र की यात्राएं करता था। महीनों महीनों तक जहाज पर रहता, उसके कई मित्रों ने उसे समझाया कि तुम तैरना सीख लो, समुद्र की यात्रा है, कब तूफान आ जाए बता नहीं सकते, कब पानी धोखा दे दे कह नहीं सकते। परंतु उसने कहा, मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि कार्य बहुत बड़ा है, धन बहुत कमाना था। परंतु मित्र बार बार कहते रहते कि तैरना सीख लो, तैरना सीख लो। वो कहता था कि मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। पर बार बार पूछने पर उसने एक दिन पूछा कि कितना समय लगेगा तैरना सीखने के लिए। तो मित्रों ने कहा, 7 दिन। पर उसने कहा कि 7 दिन तो मैं किसी भी हालत में नहीं दे सकता, क्योंकि कार्य बहुत बड़ा है। फिर उसने पूछा, कम से कम कितना दिन? तो मित्रों ने कहा कि एक अच्छा अगर तैराक मिल जाए तो वो 3 दिन में ही तुम्हें तैरना सिखा सकता है। परंतु वो कहता है कि 3 दिन भी नहीं दे सकता मैं। तो मित्र उसे समझाते हैं कि तुम एक काम करो, फिर अपने जहाज में ऐसे कैन होता है ना, पीपा, ऐसे कुछ पीपे, खाली पीपे रख दो, कि अगर कभी अचानक तूफान आ गया और नाव डूबने को है, तुम उनको पकड़ के अपनी जान बचा सको। तो वो इस बात के लिए मान जाता है और तब से फिर जहां पर भी जाता है जहाजी यात्रा के लिए, जहां वो सोता है नाव में, वहीं पर वो 2 पीपे हमेशा रखता है। और एक दिन वही हुआ जो होना नहीं था या जो कभी ना कभी होना था। बहुत जबरदस्त एक तूफान आया। इतना बड़ा वो तूफान था कि उस जहाज पर जितने यात्री थे और जो तैरना जानते थे, वो सारे समुद्र में कूद गए। यहां तक कि जो खिवैया था वो भी कूदने को था। तब इस साहूकार यात्री ने कहा, अब मैं क्या करूं? तो सब ने समझाया जो भी बचे थे कि जाओ अपने पीपे, उनको पकड़ लो, शायद तुम बच जाओगे। लगभग जहाज खाली हो गया, सभी कूद गए, वो अकेला बच गया और वो भागा जहां वो पीपे थे खाली। और अभी उन्हें लेने ही वाला था तो देखा बाजू में ही दो और पीपे जो खुद लेके जा रहा था, सोने और चांदी से भरे। अब उसके सामने प्रश्न उठा, कौन से लूं, जो सोने और चांदी से भरे हैं उनको लूं या जो खाली है उनको लूं। और अंततः जो सोने और चांदी से भरे हुए पीपे होते हैं उन्हीं को पकड़ लेता है। यह सोचकर अगर बच जाऊं तो यह सोना और यह चांदी काम आएगा। तूफान और तेज होता है, जोर से पकड़े रहता है उन दोनों भरे हुए पीपों को, और फिर उस यात्री का वही हुआ जो होना था। वो डूब गया। सभी से प्रश्न है, ऐसा क्यों हुआ, क्यों डूब गया वो? लालच का और मोह, लोभ, आसक्ति, लालच, इसके अलावा विधि का विधान, जड़ वस्तु को पकड़ के रखा और टाइम नहीं था उसके पास और बाबा की मत पर नहीं वहां बाबा कहां से आ गया और और कोई दूसरा कारण समय को पहचान नहीं सका और तैरना नहीं आता था। अगर उसने तैरना सीखा होता, पहला उत्तर तो ये है, तो शायद वो नहीं डूबता। परंतु तैरने के लिए उसके पास समय नहीं था। कितना दिन का समय कहा था? 3 दिन। 3 दिन का भी उसके पास समय नहीं था। अगर वो 3 दिन वो तैरना सीख जाता तो शायद बच जाता जीवन की इस अनंत यात्रा में। यह भाग्य का दिवस है कि हमें भी यहां 3 दिन के लिए तपस्या करने का एक स्वर्णिम अवसर मिला है। यदि योग से और ज्ञान से स्वयं को भर दिया जाए और जीवन के सागर में तैरना सीख लिया जाए तो शायद हमारी भी गति उस यात्री की तरह नहीं होगी। उसने पकड़ा उसको जो कि डुबोने वाला था। अगर उसने उन खाली पीपों को पकड़ लिया होता तो बच गया होता। तो इस ब्राह्मण जीवन में हम भी निकल पड़े हैं ऐसी ही यात्रा में, और हमारी ये जो यात्रा है एक दिन की यात्रा नहीं है, प्रतिपल यात्रा है, हर क्षण यात्रा है। कैसे आगे बढ़ना है, कैसे तैरना है, वो कौन सी विधि है, वो हम रोज तो सुनते ही रहते हैं, परंतु जब इस तरह का संगठित कार्यक्रम कहो या भट्टी कहो होती है तब वह तीव्रता और बढ़ जाती है। तो ऐसा तीव्रतर और तीव्रतम पुरुषार्थ करने का ये भट्टी एक स्वर्णिम अवसर है। जिस विषय को लेकर हम शुरुआत कर रहे हैं वो संतुलन पर है, बैलेंस जिसको कहते हैं। जहां जहां पर संतुलन है, जहां पर बैलेंस है, वहां पर ही जीवन का सौंदर्य है। अति सर्वत्र वर्जते कहा गया है, जहां जहां अति होती है वहां पर कोई ना कोई नुकसान होता है। जैसे वो नट होता है जो कि रस्सी पर चलता है, कहते हैं तालियां उनके लिए बजती है जो रस्सी पर चलते हैं ना कि रास्ते पर। क्यों बजती है? क्योंकि वहां पर बैलेंस है, संतुलन है। तो इस ब्राह्मण जीवन की जो सुंदरता है, इस ब्राह्मण जीवन का एक आधार भी कहेंगे जिसको, वो है बैलेंस। वो कौन सी बातें हैं जिसमें बैलेंस होना चाहिए, उससे इस भट्टी की हम शुरुआत करेंगे। और लगभग जो जो चीजें इस जीवन को श्रेष्ठतम बनाने के लिए चाहिए, आगे के सत्रों में उनके ऊपर भी एक दृष्टिपात करेंगे। जैसे कहा, बैलेंस एक दिन का खेल नहीं है, प्रतिपल। जैसे उस नट का उदाहरण दिया है जो कि रस्सी पर चल रहा है, हर कदम पे उसे बैलेंस की आवश्यकता है। ऐसे नहीं कि एक बार बैलेंस हो गया तो हो गया, हर कदम में बैलेंस। एक कदम भी यदि गलत तो वो नीचे गिर जाएगा। उसी तरह इस जीवन में भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनका संतुलन बहुत बहुत आवश्यक है। इनको हम तीन बातों में विभाजित करते हैं, एक शारीरिक, एक मानसिक और एक आध्यात्मिक। इन तीन तलों पर इसकी हम चर्चा करेंगे। जो क्लास यहां होगी वो केवल सुनने के लिए या केवल लिखने मात्र के लिए नहीं है, सुनते सुनते ही उसका स्वरूप बनकर, सुनते सुनते ही स्वरूप में स्थित होकर सुनना। ये जो भट्टी है, ये समझ के चलना कि मेरे जीवन में अब तक जो कुछ मैंने किया है, इस ब्राह्मण जीवन में जन्म से लेकर अब तक, उसको मुझे एक दृष्टि से देखना है। हिंदी और मराठी में एक शब्द है, सिंहावलोकन। सिंह जो होता है, जब वो चलता है और पीछे मुड़कर देखता है, उसे कहा जाता है सिंहावलोकन। इसका अर्थ है रेट्रोस्पेक्शन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पीछे मुड़कर देखना, अपने आप को टटोलना, जांचना, परखना, कहीं कोई गलती तो नहीं। तो ऐसा सिंहावलोकन, इंट्रोस्पेक्शन और रेट्रोस्पेक्शन हमें करना है, अपने आप को देखना, अपने ही भविष्य अतीत को गहराई से देखना, और भविष्य में हमारी क्या स्थिति हो उसके ऊपर भी सोचना। ऐसे वो कौन से कारण है जो कि भगवान पाने के बाद भी, भगवान मिलने के बाद भी जीवन में दुख है और अशांति है और कहीं ना कहीं संताप है और हृदय असंतुष्ट है। अभी भी उदासी आ जाती है, क्यों, क्या कारण है, उसके ऊपर गहराई से सोचना है। तो शुरुआत करते हैं संतुलन से, बैलेंस से। पहला शारीरिक, शारीरिक में कुछ और बातें हैं। एक तो नींद, दूसरा भोजन और तीसरा व्यायाम। नींद की और भोजन की और व्यायाम की चर्चा थोड़ी कम होती है ब्राह्मण परिवार में। ना अति ऊंचम ना अति नीचम, हर चीज बहुत अधिक नहीं और बहुत कम भी नहीं, ऐसी टोटल हम 14 बातें देखेंगे। उसमें शारीरिक में ये 3 बातें हैं। ब्राह्मण जीवन अर्थात उसमें 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। योगी होने के लिए 2 चीजों को सेट करना होता है, एक तो भोजन और दूसरा नींद। जिनकी ये 2 चीजें सेट नहीं है इस जीवन में, वो योगी जीवन का जो उच्चतम लक्ष्य है उस तक कैसे पहुंच पाएंगे। भोजन की बहुत अधिक चर्चा होती है। जो भोजन हम खा रहे हैं वो किन पैसों से आ रहा है, किस स्थिति में उन्हें बनाया जा रहा है, उस भोजन में क्या दोष है, जाति दोष, और किस अवस्था में उसे खाया जा रहा है, ऐसी ये 4 बातें हैं। इसके लिए भारतीय संस्कृति में चौका कहा जाता है। रसोई घर को क्या कहते हैं? चौका। जब ये 4 ही चीजें सत्वप्रधान होगी तो उस भोजन में बल होगा। भारतीय संस्कृति और सभ्यता में जो लोग भोजन बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो शादी ब्याह में भोजन बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? महाराज कहते हैं, राजा, अर्थात इंद्रिय का राजा। इसके लिए पहले वाले जो महाराज होते थे उनके कपड़े कहीं सिलाई किए हुए नहीं होते थे और उस भोजन के गृह में किसी को प्रवेश नहीं देने देते थे वो लोग, इतनी पवित्रता। तो जो भोजन हम रोज बना रहे हैं, सबसे पहली बात तो कही किस पैसों से वो आ रहा है। यदि उस पैसों में किसी की पीड़ा, किसी का दर्द और किसी को फंसाया हुआ है, फिर कितने ही योगयुक्त होकर उस भोजन को खाओ, वो बल नहीं भरेगा। जो हम खा रहे हैं वही बल बनता है। आयुर्वेद में कहा है 3 भागों में विभाजित हो जाए भोजन। जो सबसे स्थूल जो भोजन का भाग है वो मल मूत्र बनता है, जो बीच का भाग है वो देह बनता है, और अति सूक्ष्म भाग जो है वो जाकर मन बनता है। और हमारा सारा पुरुषार्थ अशरीरी होने का है, तो जिस भोजन को स्वीकार किया जा रहा है वो कितना योगयुक्त होकर खाना चाहिए, कितनी उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, ये अति सूक्ष्म पहलू है उसके। तो सबसे पहले तो कहां से आ रहा है, दूसरा किस अवस्था में वो बना जा रहा है। यहां पर ऐसी कितनी माताएं हैं जो रोज भोग लगाती है अपने अपने घरों में, लगभग सभी। और भाई ऐसे कितने हैं जो रोज भोग लगाते हैं? ऐसे कौन है जो भोजन बनाते नहीं है परंतु भोग लगाते हैं? भोग वास्तव में अगर देखा जाए तो भक्ति मार्ग की परंपरा है। यहां हम क्यों लगाते जबकि यह ज्ञान मार्ग है? वास्तव में भगवान तो कहता है मैं अभोक्ता हूं, परंतु हमारा ये प्रेम है। क्या भोग लगाया जा रहा है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योम्या भक्त्या प्रेष्यति। पत्र, पुष्प और फल भी यदि कोई अनन्य प्रेम से और अनन्य भाव से हे अर्जुन मुझे अर्पण करे तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। और वो जो समय है भोग लगाने का वो भी योग में गिना जाएगा, इसलिए भोग लगाना है। जो नहीं भी बनाते और घर पे रहते हैं वो भी खाने से पहले उसे प्रभु अर्पण करे, उसे दृष्टि दे और भोजन बनाते समय जितनी योगयुक्त अवस्था होगी उतना वो शक्तिशाली बनेगा। अव्यक्त बाबा का एक संदेश था गुलजार दादी द्वारा बहुत समय पहले, जिसमें बाबा ने कहा था यदि कोई योगयुक्त होकर भोजन बनाए और खाए तो 50% 50% पवित्रता वैसे ही आ जाएगी जीवन में। अभी जो संघर्ष है पवित्रता के लिए, अभी जो मन के किसी कोने में वासना अभी भी घर किए हुए है, क्यों पवित्रता खंडित होती है? शायद सब कुछ करने के बाद भी भोजन में वह पवित्रता नहीं है। इसलिए अनन्य भाव से, प्रेम भाव से भोजन बनाना है। यहां तक कि जो जो चीजें उसमें डालते हैं, चाहे तेल डाल रहे हैं, उस एक एक वस्तु को भी दृष्टि देते हुए मौन में अगर बनाया जाए तो वो अति शक्तिशाली ब्रह्मा भोजन होगा। वैष्णव भोजन, ब्रह्मा भोजन, दुख भंजक 60-85 की एक मुरली है जिसमें बाबा ने कहा है ये ब्रह्मा भोजन दुख भंजक है। तो कैसे आ रहा है, कैसे बनाया जा रहा है और फिर है कैसे खाया जा रहा है, किस अवस्था में उसे स्वीकार किया जा रहा है। जितना वो योगयुक्त होगा उतनी ही आत्मा में बल भरेगी। एक योग का छोटा सा अभ्यास है कि हम जिसमें ये देखें कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर मैं भोजन स्वीकार कर रहा हूं, कहां पर? कल्प वृक्ष के, और जो जो एक एक निवाला मैं खा रहा हूं इस कल्प वृक्ष की, जितनी आत्माएं हैं संसार की हर एक आत्मा तक ये भोजन जा रहा है। समान के साथ मैं परम पवित्र आत्मा हूं दृष्टि देते हुए। टीवी देखते देखते कौन कौन भोजन करता है, हाथ खड़ा करो। है सब माताएं में से भी है। इलेक्ट्रॉनिक माया, डिजिटल माया, माया ने अपना रूप बदला है। एक की याद में स्वीकार करना, एक को खिलाते हुए स्वीकार करना, क्योंकि हमें इस देह से अशरीरी होना है। ये जो देह है, अन्न जो जाकर यह देह बन रहा है, उसी देह से अशरीरी होना यही पुरुषार्थ है। तो मन एकाग्र हो, मन एकरस हो, एक की याद में हो और फिर उसे स्वीकार किया जाए तो वो अशरीरी होने का अभ्यास सहज होगा। तो ये चारों ही बातें, उसमें भी संयम, बहुत अधिक नहीं और बहुत कम भी नहीं, ये पहला। दूसरा नींद, ब्राह्मणों को कितना देर नींद करनी चाहिए? 4 घंटे बहुत कम हो गया, कितना? 5 घंटा, 6 घंटा। नींद हरेक की अपनी अपनी है एक रीति से। तो छोटा बच्चा जो होता है बहुत सोता है क्योंकि शरीर बन रहा है, कार्य चालू है अंदर, थोड़े देर उठता है और सोया रहता है, छोटा सा पालना में जो है। जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, बूढ़े लोगों की नींद थोड़ी कम होती है। नींद एक ऐसा विषय है कि हरेक को अपनी नींद खुद सेट करनी है। इसके बारे में दुखी नहीं होना है कि हमारी नींद कम हुई, शरीर कि सिस्टम ऐसी बनी हुई है कि वो नींद स्वतः ही पूरी हो जाती है। हमें कभी इसकी चिंता नहीं होती है कि हमारा आज योग थोड़ा कम हुआ तो अलग से बैठ के योग कर ले, परंतु जिस दिन नींद कम हुई निरंतर चिंता रहती है अंदर, कोई अवसर मिल जाए और नींद पूरा करे, परंतु शरीर को पता है उसे क्या करना है और कैसे नींद पूरी करनी है, परंतु फिर भी हमें अपनी नींद खुद सेट करनी है। कितना देर सोना है, कैसे सोना है, जो हमारी नींद की अवस्था है सोने की वो योगियों की तरह हो। मुरलियों में आता है ना, कोई देखे तो लगे एक तपस्वी सो रहा है। तो नींद ना बहुत ज्यादा और ना बहुत कम, अगर बहुत कम भी कर दी जाए तो भी कार्यक्षमता कम हो जाएगी। ऐसे कितने ही देश हुए हैं इतिहास में जहां पर जो कैदी होते थे या जो बगावत करने वाले होते थे उन्हें एक सजा दी जाती थी अनिद्रा की, नींद नहीं करने दिया जाता था उन्हें, और ये इससे बड़ी और कोई सजा नहीं है नींद ना आना। बहुत सारे उदाहरण इतिहास में है, ढोल में जैसे उनको बंद कर दिया जाता था और ढोल पीटते रहते थे 24 घंटा, उन्हें हाथ नहीं लगाते थे, परंतु अनिद्रा की शिक्षा। और व्यक्ति जब लंबा समय तक नींद नहीं कर पाता तो देह पर प्रभाव होने लगता है। इसके लिए नींद को इतना भी कम ना कर दो कि उसका देह पर प्रभाव पड़े। यह शरीर बहुत मूल्यवान है, रोग हो जाए उसके बाद में परहेज करना, इससे पहले बुद्धिमानी है कि रोग होने से पहले ही जीवन को संयमित नियंत्रित कर दिया जाए। तीसरा है व्यायाम, एक्सरसाइज। हमारे पास दो एक्सरसाइजेस, एक शरीर की और एक मन की, आत्मा की, रूहानी। तो दोनों ही एक्सरसाइज बहुत आवश्यक है। संसार में आजकल तो सभी डॉक्टर्स भी कहते हैं मोटापा, बीमारियां, असंख्य बीमारियां उससे जुड़ी हुई है। तो ये तीनों ही चीजों का संतुलन, एक्सरसाइज में भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने, हम यहां कोई बॉडी बिल्डर बनने नहीं आए हैं। कुमार होंगे यहां पर कुछ या कल आएंगे, कई कुमार उसमें लग जाते बॉडी बिल्डिंग में, वो भी हमारा लक्ष्य नहीं है। दंड बैठक ही करते रहते हैं दिन भर। शरीर के साथ में आत्मा को भी शक्तिशाली बनाना है। तो ये तीन शारीरिक, मानसिक में दो, एक तरफ भावना और दूसरी तरफ विवेक, इसका बैलेंस। केवल भावना में बह जाना यह भी नहीं, दूसरी तरफ विवेक भी है। भावना में यदि विवेक ना हो तो भावनाएं कहां से कहां बहा ले जाती है व्यक्ति को। विदेश में एक लेखक हुआ है लियो टॉल्स्टॉय, उसने अपनी जीवन कहानी में एक बचपन का संस्मरण लिखा है उसकी मां के बारे में। लियो टॉल्स्टॉय रशिया रूस का एक लेखक था, उसने लिखा है कि मेरी मां जो थी बहुत भावना वाली थी, इतनी संवेदनशील थी कि मैं क्या बताऊं, मैंने उसके जैसी कभी महिला देखी नहीं जीवन में, परंतु मेरा भ्रम ये एक दिन टूट गया। उसकी मां बहुत साहूकार घराने की थी, वो बहुत अमीर थे, और वो बग्गी में बैठकर उस ठंड में ड्रामा नाटक देखने जाया करती थी, और जब नाटक होता था आंखों से आंसू बहते थे, इतनी भावनाएं कि जैसे जो नाटक में हो रहा है दृश्य उसके आंसू बहने चालू हो जाते थे। परंतु एक दूसरी भी बात थी साथ साथ, उसकी जो बगिया थी जिसमें वो बैठ के आती थी, वो जो रथ कहो टांगा कहो, वो जो रथवान था उसको ये सख्त आदेश था कि वहीं खड़े रहना है, वहां से हिलना नहीं है। इतनी ठंड कि वो पूरा अकड़ जाता था। कई बार तो कितने सारे रथवान की मृत्यु भी हो गई। वो वहां से रोते हुए आती थी और देखती थी, अगर ये मर गया तो उसको हटा के दूसरे को लाती थी। तो लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है, मैं तो समझता था कि मेरी मां जो है बहुत ही भावना संपन्न है, परंतु ये कैसी भावना है, इधर एक जीवंत मनुष्य मर जाता है परंतु उसे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी हम सोचते हैं कि हमारी जो भावनाएं हैं जिसे हम प्रेम की संज्ञा देते हैं, शायद वह नहीं है जो होनी चाहिए। कुछ दिन पहले संडे एक मुरली चली थी जिसमें बाबा ने मोह के लिए कहा था, अच्छा लगता है तो सभी अच्छा लगना चाहिए, यह मोह का रूप है, यह अच्छा लगता है वो अच्छा लगता है, 36 प्रकार का भोजन भी अच्छा तो सूखी रोटी और गुड़ भी अच्छा, चत्तियों वाला वो कपड़ा अच्छा तो बढ़िया कपड़ा भी अच्छा, सभी अच्छा हो तो ये भी भावना। और दूसरा है विवेक, तर्क, रीजन, लॉजिक। माइंड जो है मनुष्य का अति में डोलने का उसका स्वभाव है, कभी एकदम भावना में चला जाता है तो कभी एकदम विवेक, केवल विवेक, केवल तर्क। इस ज्ञान मार्ग में दोनों ही आवश्यक है। भावनाओं की गति क्या है, विवेक की गति क्या है, दोनों का संतुलन, ये पहला मानसिक में। दूसरा, कई बार मुरलियों में आया है बालक और मालिक, ये मन की गति है, कहां मालिक बन जाना और कहां छोटा बच्चा बन जाना। बाबा ये मीटिंग्स के लिए कहते हैं, मीटिंग्स जब होती है तब अपना अपनी राय देने में मालिक, और जब निर्णय हो जाए तब बालक। वैसे ही हमारे घरों में भी हमें कई बार मास्टर बनना है तो कहीं चाइल्ड बनना है, कहीं मालिक तो कहीं बालक। अगर जहां बालक बनना है, सबसे बड़ी गलती यहां है, वहां हम मालिक बन जाते हैं तो फिर कलह, झगड़ा शुरू होता है। स्वयं हमें ही सोचना है हमें कब क्या बनना है। और सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक बैलेंस, स्पिरिचुअल बैलेंस। उसमें टोटल बहुत सारी बातें हैं परंतु हम लगभग 9 बातें हैं वो लेंगे। सबसे पहला जो बाबा ने कहा है, लव और लॉ, अर्थात माताओं को पता है लव और लॉ क्या होता है, क्या होता है, प्रेम और लॉ, नियम, कानून। यज्ञ में बहुत सारे नियम और मर्यादाएं हैं, प्रेम के बहाव में आकर उन नियम और मर्यादाओं को तोड़ना नहीं, यह बैलेंस। बाबा ने कहा है, मर्यादा के विरुद्ध अगर किसी को सुख देते हो वो भी श्रीमत नहीं है। लव प्रेम स्वरूप कब हो और कब हमें नियमों पर स्थिर होना है, स्थिर होना है, इसकी सूक्ष्म समझ। इसके ऊपर और चिंतन करना, आगे की क्लास में भी इसका विस्तार करेंगे। तो पहला लव और लॉ, दूसरा लव और पावर, प्रेम और शक्ति। कहां शक्तिशाली बन जाना है, विकराल रूप धारण करना है, और कहां पर प्रेम स्वरूप रहना है, ये परख हमें होनी चाहिए। कलयुग का समय है, मनुष्यों की दृष्टि और वृत्ति विकारी है, कहां किसकी दृष्टि बदल जाए कह नहीं सकते। इसके लिए कहां विकराल रूप शक्ति स्वरूप बन जाना है शिव शक्ति, और कहां प्रेममय रहना है, इसका बैलेंस। तीसरा, लविंग और डिटैच, न्यारा और प्यारा। प्यारा इतना नहीं बन जाना है कि उसमें वो न्यारापन खो जाए। इस यज्ञ में प्यारा होने का कोई पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ केवल न्यारा होने का है। जो न्यारा है वो स्वतः ही प्यारा है। पुरुषार्थ डिटैचमेंट का है, स्वयं को अलग कर देना, उसका पुरुषार्थ है। जो डिटैच है, अलग है और न्यारा है, वो स्वतः ही सबका प्यारा बन जाता है। ऐसी अनासक्त वृत्ति अंदर से सबके बीच में है, सबसे प्रेममय व्यवहार है, सबके बीच में चल रहे हैं, परंतु अलिप्त है। बाबा ने मुरलियों में कहा है आत्मा निर्लेप है, ऐसे संसार के लोग समझते हैं सन्यासी, पर वैसा नहीं है। आत्मा में लेपछेप लगता है, आत्मा में लेपछेप लगता है, आत्मा निर्लेप नहीं है, परंतु मैं आत्मा निर्लेप हूं ये समान है। मैं आत्मा निर्लेप हूं, इस संसार की कोई भी आसक्ति, कोई भी आकर्षण मुझे, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु प्रभावित नहीं कर सकती, यह समान है। तो पुरुषार्थ करना है स्वयं को न्यारा बनाने का। इस यात्रा में चलते चलते इतने लोगों के में उलझ गई है जैसे आत्मा, लक्ष्य था सबका प्यारा बन जाए, परंतु विधि गलत हो गई। विधि है न्यारापन, ये तीसरा बैलेंस। चौथा, साधन और साधना। इतने सारे साधन है, इतने सारे साधन है, और चाहिए और चाहिए, परंतु साधन कभी भी तृप्त नहीं करते। इच्छाएं जो है साधनों को पाने की, वो कभी भी तृप्त नहीं होती। यज्ञ में सबसे अधिक साधना उस समय की गई थी जब साधनों का अभाव था। श्रेष्ठतम साधना साधनों के अभाव में ही होती है, या फिर अगर साधन है तो उससे कितना अलिप्त है आत्मा। साधनों में डूब जाना ये भोग विलास है, साधनों के होते हुए उससे अलिप्त रहना ये ऋषि का स्वभाव है। तो स्वयं को चेक करना है, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया, सत्य इतना सस्ता नहीं है कि किसी सोशल मीडिया में मिल जाए। साधना है सत्य की, परम सत्य को पाने की। तो साधन और साधना का बैलेंस। अगला है स्वस्थिति और सेवा। सेवाओं का इतना विस्तार है, इतना विस्तार है यज्ञ में आज, कभी कभी लगता है इन सेवाओं के जंगल में स्थिति खो जा रही है। किस लिए सेवा कर रहे हैं, और इसी सेवा में स्थिति डिस्टर्ब, इसी सेवा में खुशी गुम, इसी सेवा में टकराव, इसी सेवा में संघर्ष। हम सोचते हैं बहुत सेवा करें, बहुत सेवा करें, बहुत सेवा करें, परंतु सबसे बड़ी सेवा स्वयं की है। जब तक स्वयं को शक्तिशाली नहीं बनाएंगे, हम औरों को कैसे शक्तिशाली बना सकेंगे। आज की मुरली सुनी ना सुबह, निमित्त बनी हुई आत्माएं शक्तिशाली हो तो वायुमंडल शक्तिशाली बनेगा, तो आत्माएं निर्विघ्न बनेगी। उसके लिए स्वयं पर अटेंशन। इसके लिए खो नहीं जाना है, स्वयं को बार बार याद दिलाना है, उठते ही एक प्रश्न, किस लिए आए थे और क्या कर रहे हैं, बाबा के पास किस लिए आए थे हम, किस लिए आए थे, माताओं की तरफ से क्या लक्ष्य लेकर आए थे, क्या उमंगे थी मन में, कहीं इस मार्ग पे चलते चलते वो खो तो नहीं गया, किस लक्ष्य से आए थे, क्या करने आए थे, सेवा करने, सेवा का पता था तब, किस लिए आए थे, क्या करने, किस लिए। हर एक बहुत ऊंचा लक्ष्य लेकर आया था यहां, जन्म जन्म की जो प्यास थी प्रभु मिलन की, प्रभु को पाने की, वो पूर्ण हुई है यहां पर। इसलिए स्वयं को याद दिलाना, मैं यहां क्यों आया था और क्या कर रहा हूं, स्वस्थिति और सेवा। अगला है जिसको कहते हैं कथनी और करनी, इसका सूक्ष्म बैलेंस, इस पर बहुत सारी मुरलियां चली है, किसी किसी अव्यक्त मुरलियों का यह टॉपिक रहा है, जो हम बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। इस पर ध्यान देना है, बोले तैसा साले त्याची वंदना पाऊले, अंगे झाड़ी न अंगन त्याचे दायित्व करी, जो बोलता है वैसा ही करता है। क्या कहा है संतों ने, उनके घर का आंगन साफ करेंगे इस शरीर से, ये भी एक साधना है कि हम बोले वह जो कर सके। ऐसी साधना करनी है। अगला बैलेंस है लौकिक और अलौकिक का, लौकिक और अलौकिक। जितना समय हम, कई सारी मुरलियां इस पर चली है कि जितना समय लौकिक में देते हो क्या उतना ही अलौकिक में देते हो। बाबा ने तो कहा यह पढ़ाई एक घंटे की है, परंतु यह पढ़ाई केवल एक घंटे की नहीं है, मुरली सुनना, उसका चिंतन करना, मनन करना, अध्ययन करना, समय चाहिए। और लौकिक के इतने सारे बंधन हैं, उसमें जब आत्मा फंसती है तो ये खो जाता है, इधर आती है तो वो खोता है। जैसे कहा अति में डोलने का स्वभाव है मनुष्य मन का, इधर जाता है तो वो भूलता है, उधर जाता है तो ये भूलता है, थोड़ा समय तक स्थिर रहता है, फिर इधर फिर उधर, दिवस रात्र अम्मा युद्धा सा प्रसंग, अंतर बाह्य जगानी मन, दिन रात यही संघर्ष, अंत कलह है, इधर जाओ तो वो छूटता है, उधर जाओ तो वो छूटता है, क्या करें। ऐसा है कि नहीं है, नहीं है तो ये माता है बहुत पावरफुल है, फिर अगर ऐसा नहीं है तो क्या करें। एक मन में प्रश्न बार बार उठता है, क्या किया जाए, क्या किया जाए, इधर इसको पूरा छोड़ दे और इसमें आ जाए, या इसको पूरा छोड़ दे और उसमें आ जाए। बहुत सूक्ष्म बैलेंस है। सुरेश भट्ट करके कवि है, उसने लिखा है एक मादा सवाल लाख मोला था, हे करावे कि ते करावे कि ते करावे कि ते करावे कि ते करावे कि ते, क्या करना है, ये करे कि वो 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 करे कि वो। ये स्वयं ही निर्णय करना है, स्वयं का संतुलन खुद ढूंढना है, और एक दिन नहीं प्रतिपल। जैसे कहा वो नट एक बार अगर चलने लग जाए तो निश्चिंत होकर नहीं चलता है, हर पल उसे संतुलन की आवश्यकता है। उसके हाथ में लकड़ी भी होती है, कभी लकड़ी इधर चला जाए तो इधर डोलता है वो, ताकि बैलेंस रहे। तो वह स्थिति ना हो, अगर हो रही है तो रुकना है, ये सोचना है जीवन में करना क्या है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कहीं संतुलन बिगड़ तो नहीं रहा है। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। शेक्सपियर का हेमलेट चिल्लाता है अकेला, जगाव कि मराव, हा एकच सवाल है, व्हाट टू डू, ये करे कि वो करे, वो करे कि वो करे, ये प्रश्न स्वयं से पूछना है। इसके लिए इस ज्ञान मार्ग में तीन बातें कही जाती है। एक तो स्वयं से बातें करो रोज, ये ऐसी तीन बातें हैं जो रोज करनी है। एक, स्वयं से बातें करो। दूसरा, किससे बात करेंगे, बाप से बात करो। और तीसरा, ज्ञान का मनन चिंतन करो। और ये तीन काम रोज करने, एक बार नहीं, जितनी अधिक बार हो सके इस कार्य को करना। तीनों ही कार्य, स्वयं से बात करना, बाबा से बात करना और ज्ञान का मनन करना। तो ये संतुलन, अगला संतुलन है ज्ञान और योग का संतुलन। कभी ज्ञान बहुत अधिक तो योग बहुत कम, कभी योग बहुत ज्यादा तो ज्ञान बहुत कम। ज्ञान अर्थात मुरली सुनना और मुरली पढ़ना नहीं। एक अव्यक्त मुरली है जिसमें बाबा ने कहा है, गए मुरली सुने, पढ़े या पढ़ाया और आ गए, ये है पुरानी चाल, ये है पुरानी चाल। अब आगे भी तो बढ़ना है, समझना है हम क्या पढ़ रहे हैं। एक एक पॉइंट का जब तक चिंतन नहीं होता तब तक वो शक्ति नहीं बन सकती। ज्ञान शक्तिशाली नहीं बनाता, ज्ञान का चिंतन और मनन और अध्ययन और पठन और पाठन शक्तिशाली बनाता है। जैसे भक्ति मार्ग में पाठ करते, हरि पाठ, पाठ अर्थात एक बार नहीं, बार 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 बार, वैसे ही ये ज्ञान भी क्या है, उसका वैसा पाठ करना है। जब तक वो पाठ नहीं होता है और जब तक रक्त धमनियों में रक्त की तरह ना बहे, तब तक रुकना नहीं है। ज्ञान का और योग का, अपना योग का प्रोग्राम खुद ही बनाना है। ऐसे नहीं कि यहां अभी संगठित योग हो रहा है तो योग करेंगे, बाद में पूरा हुआ। अपना रोज स्वयं को खुद ही योग भट्टी करानी है अपनी। फिर है योग और कर्म, योग और कर्म। कर्म में इतने ना खो जाना या इतना थका देना स्वयं को कि योग के लिए समय ही नहीं है। यहां हम आए किस लिए थे, तपस्वी बनने के लिए, योगी बनने के लिए। कर्म हमें थकाए नहीं, योगः कर्मसु कौशलम की अवस्था भी तभी आएगी जब स्थिति श्रेष्ठ हो, और श्रेष्ठ स्थिति में ही श्रेष्ठ सेवा की जा सकती है। कम श्रेष्ठ स्थिति में सेवाएं होगी परंतु उसका प्रभाव, दूरगामी जो प्रभाव होना चाहिए वो नहीं होगा। डिस्टर्ब स्टेट ऑफ द माइंड कंडीशन में 7 डेज का कोर्स कराया जा सकता है, परंतु सामने वाली आत्मा उतना ही ग्रहण करेगी जितना हमने अपने जीवन में धारण किया है। हम जो बोल रहे हैं वो नहीं बोल रहे, वो आत्माएं ग्रहण नहीं कर रही है, आत्मा वह ग्रहण करेगी जो हमने धारण किया है। एक है भाषण देना, ज्ञान सुनाना, दूसरा है अनुभव कराना। परंतु हमारे शब्द में बल भी तभी आएगा जब योग की शक्ति होगी। बोलते जे अर्णव पीयूषा चे, जो शब्द निकल रहे है वह अमृत कब होगा, सागर कब होगा अमृत का, जब अंदर ऐसी धारणाएं होगी। कितने हो गए? 9। तो ये अध्यात्म में 9 प्रकार के बैलेंस, शारीरिक में 3 प्रकार के बैलेंस और मानसिक में 2, परंतु मुख्य रूप से इतने हैं 14। परंतु अव्यक्त मुरलियों में और कई तरह के बैलेंस आते हैं। कहने का भाव एक ही है, हमारा जीवन एक बैलेंस्ड लाइफ हो, एक संतुलित जीवन हो। यदि संतुलन खो रहा है, कौन हमको सिखाएगा, कौन हमको समझाएगा? स्वयं ही स्वयं को उठाना है, स्वयं ही स्वयं में शक्ति भरनी है। क्यों मूर्छा में है हम? जब जब अगर हम यहां से चले तो नहीं, कोई जबरदस्ती और जानबूझकर नहीं गिरता। हां, यदि वो थोड़ा सा नशे में है तो गिरेगा, बेहोशी अगर आ गई तो गिरेगा। वैसे ही इस जीवन में जब जब बेहोशी और जब जब मूर्छा और जब जब अटेंशन की कमी होगी, तब तब हम नीचे गिरते हैं। स्वयं को स्वयं उठाना, स्वयं को स्वयं स्थिर करना, यह पुरुषार्थ है। हमारा लक्ष्य, हमारी जो मंजिल है बहुत बड़ी है, वहां तक हमें पहुंचना है। तो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, सारे प्रकार के बैलेंस शारीरिक में सभी बताएंगे। कौन कौन सी बातें बताई? 3। सबसे पहली नींद, दूसरा भोजन, अधिक भोजन करना, एक दूसरी सूक्ष्म बीमारी है बहुत अधिक भोजन करना। योगी का भोजन कम हो, बहुत गरिष्ठ तो सुबह कैसे उठ पाएंगे और कैसे योग में अलर्ट बैठ पाएंगे? क्यों योग में फिर नींद आती है? नींद का प्रभाव, नींद का प्रकोप, प्रभाव नहीं प्रकोप, भयंकर नींद। तो नींद, तीसरा व्यायाम, मानसिक में, मानसिक संतुलन में भावनाएं और विवेक, भावनाओं में बह नहीं जाना है। एक छोटी सी कहानी है इसके साथ ही भावना के संबंधित। एक बहुत साहूकार व्यक्ति होता है जिसका बेटा घर छोड़कर चला जाता है, कई सालों तक नहीं आता है, कई सालों तक, और एक दिन अचानक खत आता है कि पिताजी मैं आ रहा हूं, आप मुझे लेने आ जाइए, क्योंकि मैं कंगाल हो गया हूं, जितने पैसे मेरे पास थे सब खर्च हो गए, अब कुछ भी मेरे पास नहीं रहा है। तो वो पिताजी को आने को कहता है। पिताजी भाव विभोर हो जाते हैं कि मेरा बेटा आ रहा है। उसको लेने स्टेशन पहुंचते, परंतु उसका बेटा, ट्रेन थोड़ी पहले ही आ जाती है और बेटा आ चुका होता है, और पास ही में एक धर्मशाला होती है, वहां पर बेटा रुक जाता है। तो पिता जो साहूकार व्यक्ति है, इतना वाव विभोर, भाव विभोर, मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है, सारे गांव में बताता है कि मेरा बेटा वापस आ रहा है। पहुंचता है उस स्टेशन पर और जब देखता है कि बेटा नहीं आया है, तो सोचता है मैं यही इंतजार करूंगा उसका। और रात हो जाती है, बहुत सर्द रात, विदेश की कहानी है, माइनस में टेम्परेचर चल रहा होता है। तो उसी धर्मशाला के पास जाता है और क्योंकि वो बहुत साहूकार होता है कहता है मुझे कमरा चाहिए। वो धर्मशाला का मालिक कहता है कि हमारे पास कोई भी कमरा नहीं है, एक ही कमरा बचा था, वो अभी अभी एक युवक आया है उसको दिया है। और वो युवक तो एकदम भिखारी जैसा लगता है। तो साहूकार कहता है तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं, इस गांव का सबसे बड़ा मालिक मैं हूं, उसको निकालो बाहर और मुझे रुकना है यहां पर। तो उस लड़के को निकाला जाता है, वो रुकता है, जिसको निकाला जाता है वो उसी का बेटा होता है। उसको रात भर बाहर ठंड में उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है और दिखाया है उसमें वो मर जाता है। वो जो साहूकार अपने बेटे के लिए रो रहा है कि आएगा मेरा बेटा, और बहुत खुशी भी हो रही थी उसको कि बेटा आने वाला है। सुबह जब उठता है और देखता है कि ये भीड़ किस लिए है, तो पाता है कि कोई युवक है रात भर यहां रहकर मर गया। देखता है तो पाता है ये तो मेरा ही बेटा है। ये कैसी भावनाएं हैं। एक तरफ तो इतना भावनाओं का भाव, परंतु वहां पर सत्य तर्क लॉजिक कहीं गुम हो रहा है, लुप्त हो रहा है। ऐसी हमारी भावनाएं ना हो। फिर अध्यात्म में कुछ बैलेंस बताए, कौन कौन से? सबसे पहला प्रेम से संबंधित तीन, लव और लॉ, लव और शक्ति पावर, तीसरा न्यारा और प्यारापन, फिर उसके बाद लौकिक और अलौकिक, लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन दोनों में बैलेंस, प्रोफेशनल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ ये भी उसको कह सकते हैं, फिर साधन और साधना, स्वस्थिति और सेवा, कथनी और करनी, योग और ज्ञान, योग और कर्म, इतने ये बैलेंस है।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी का, पर जोरदार तालियों से।